वैष्णव को प्रणाम करता हूं। श्री गुरु और श्री प्रभुपाद और हमारी परंपरा के सब आचार्यों की वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मैं कुछ शब्द बोल सकूं जो मुझे स्वयं को शुद्ध बनाने वाले हों और आपको भी शुद्ध बना सके। कृष्ण भावना का अर्थ है आत्मा को शुद्ध बनाना। हम सब इस भौतिक संसार में माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। कृष्ण को भूल जाने के कारण अलग अलग योनियों में भटक रहे हैं। जब सौभाग्यवश किसी को गुरु के दर्शन होते हैं, सच्चे साधु के दर्शन होते हैं, तो उसको मार्ग पता चलता है कि कैसे वापस हम कृष्ण के पास लौट सकते हैं। मानव जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को फिर से जागृत करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कब उनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त कुरिय उदय। कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, स्वाभाविक रूप से है। वो प्रेम को हम भूल गए हैं और वो प्रेम जागृत हो सकता है कृष्ण के बारे में श्रवण करने से और कृष्ण का नाम लेने से। चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषित किया कि भगवान को प्राप्त करने के सब तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है उनके नामों का कीर्तन और जप करना। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन कलयुग में विशेष करके नाम ज्यादा महत्व। सारा भट्टाचार्य ने पूछा कि भक्ति के सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया कि सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सनातन गोस्वामी ने भी यह प्रश्न पूछा और चैतन्य महाप्रभु ने यही जवाब दिया। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह विश्वास होना चाहिए, पहली बात, कि नाम और नामी इसमें कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्न नाम नामित्वम। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अगर कोई एक श्लोक का अर्थ समझ जाता है और उस पर विश्वास करता है तो भगवान के धाम जा सकता है। आप बोलोगे प्रभु जी आप कई चीज बोलते हो कि सिर्फ एक चीज कल मैंने बताया था वो भी एक चीज। प्रभु जी बोलते हैं इफ वन अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द होली नेम ऑफ कृष्ण एंड द पर्सन कृष्ण देन वन कैन गो बैक टू गॉड। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है तो भगवत धाम जा सकते। कृष्ण का नाम चिंतामणि सब रसों से भरा हुआ, चिंता नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त नाम सब नियमों से परे है, नाम सारे बंधनों से परे है। जो नाम लेता है वो सारे बंधन से दूर हो जाते। एक एक हरि नाम लेने से सारे बंधन दूर हो जाते अगर सच्चे दिल से। तो हमारे ये दो दिन का जो सेमिनार है क्लास है उसका उद्देश्य है कि आपको जो श्री प्रभुपाद ने पुस्तकों में दिया है उसके आधार पर मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि कैसे हम नाम जप को ऐसा कर सके जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो। हमारा नाम जप में एक विशेष प्रकार का गुण होना चाहिए। अगर हमें पता होगा कि कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों एक है तो हमें जप में नींद नहीं आएगी, है कि नहीं? कभी ऐसे हुए मुझे प्रभु कि आपके घर में भगवान कृष्ण खुद आए और आप बोले आइए और अंदर को बिठा के आप सो जाएं, समझो आपके घर में प्रभुपाद आ रहे, कितना सौभाग्य होगा। जयानंद प्रभु सोचे प्रभुपाद आपके घर में आ रहे कितनी खुशी होगी, और आप प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं आसन देते हैं अंदर जाके मैं सो गया, ऐसा नहीं। आप मालूम प्रभुपाद इतने महान भक्त है, प्रभुपाद के कोई प्रतिनिधि भी आ जाए जो वर्तमान सन्यासी हैं तो भी हम कितने अलर्ट होंगे, ऐसे नाम जब में बहुत अलर्ट रहना चाहिए कि कृष्ण से मैं संग करूं, मेरे को पूरा अटेंशन होना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ थोड़ा सीनियर हूं भक्ति में या उम्र में, इसलिए आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं और अपना समय निकालकर आप जाग रहे हैं, जागते हुए सुन रहे हैं आशा है। तो भगवान सामने, समझो भगवान प्रवचन कर रहे हैं तो कैसे आप अलर्टनेस हो गए, समझो कृष्ण भगवान खुद आए बोले मैं कोल्हापुर में 2 दिन का कोर्स कर रहा हूं, कितना अलर्ट है। तो ये जो 2 घंटे हैं आप जब नाम जप के समय निकालते हैं, 2 घंटे या 1.5 घंटे या 2.5 घंटे, वो पूरे अलर्टनेस के साथ करें, ये पहला स्टेप है। दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। क्योंकि अभी जो भी भक्त यहां पे आए हैं, मैं आशा करता हूं वो ये तो जानते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें नाम जप करना है, और नाम जप के साथ साथ शरीर के लिए अलग अलग चीज करनी पड़ती है। अगर आप गृहस्थ हैं तो थोड़ा मेंटेनेंस करना होता है घर का पालन करने, तो नौकरी करनी होती है, नौकरी करने स्कूटर चाहिए होता है, स्कूटर के लिए थोड़ा पेट्रोल भरना पड़ता है, फिर घर के पास क्लीनिंग के लिए साबुन लेना होता है, फिर उधर बढ़ जाता है। लेकिन मेन चीज क्या है, नाम जप। हम मंदिर क्यों बांध रहे हैं, मंदिर बांधने में भी मुझे पता नहीं लेकिन लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि आप सब आए, नाम कीर्तन करें और बैक टू गए। हम प्रसाद भी इसलिए बनाते हैं, प्रसाद लेने से शक्ति आएगी फिर नाम जप कर सके, नहीं तो हम खाली 1 प्लेट बना सकते थे गोपीनाथ के लिए, लेकिन हम क्यों प्रसाद बनाते हैं, जिससे कि प्रसाद खा के शक्ति है। हम पुस्तक क्यों पढ़ते हैं, अभी पिछले सप्ताह मैंने सुना यहां पर बहुत सुंदर भक्ति शास्त्री कोर्स हुआ और बड़ी संख्या में आप सब आए यहां पर। भक्ति शास्त्री का उद्देश्य क्या है कि आपको भक्ति के शास्त्र समझ में आए, गीता भागवत, और सब शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है, हरे नाम एव केवलम। अल्टीमेट पॉइंट वो है, आपको यहां से स्टेशन, आपको यहां से बंबई जाना है, रेलवे स्टेशन से सह्याद्री एक्सप्रेस पकड़ना है 10:50, तो हो सकता है आप यहां से जाएं, हो सकता है थोड़ा टाइम हो तो आप घूम के कहीं जाएं, थोड़ा देर रंकाला में बैठे, लेकिन जब टाइम होगा तो ट्रेन भी पहुंचे। तो हमारा उद्देश्य फिक्स है, मुझे नाम जप करना। इसलिए पहला चीज है अपने जीवन में 1.5 या 2 घंटे जप के लिए केंद्रित रखें, और वो समय और कुछ नहीं करना। बड़े से बड़े इंपॉर्टेंट कॉल्स हो, बिजनेस में लाखों का नुकसान हो रहा हो, कोई बात नहीं, ये कृष्ण दे देंगे। अब नाम जब ठीक से करोगे कृष्णा के बोलेंगे, कितना चाहिए आपको, 1 करोड़, कृष्णा दे देंगे। आप खाली नाम जब ठीक से करो कृष्णा को सब कुछ दे देंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। आप बोलोगे प्रभु जी आप बोल रहे क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी हो, आपको तो प्रसाद मिल जाएगा, हम ही पैसे कमा के देते हैं उसके लिए, और आप भी इसे बोल रहे हो, लेकिन आपको अगर मालूम नहीं कितना कष्ट होते। मैं जानता हूं, मैं भी कुछ समय कंप्यूटर्स में था, सर्विस में किया, लेकिन अल्टीमेटली सत्य है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए अगर मैं नाम जब ठीक से करूंगा तो मुझे जो चीज चाहिए कृष्ण दे देंगे। इसलिए पहला स्टेप ये विश्वास होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को मिलते हैं, पूछते हैं श्रीवास आप गृहस्थ हो, आप घर आपके पत्नी बच्चे हैं, लेकिन आप कुछ नौकरी नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूं पूरा दिन आप हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, आपके परिवार का पालन कैसे होता है, आप परिवार को कैसे मेंटेन करते हैं। श्रीवास ने क्या जवाब दिया, 1, 2, 3 3 बार ताली बजे। महाप्रभु बोले ये क्या है, ठीक ठीक जवाब दीजिए। श्रीवास बोले जब मैं 3 बोलता हूं तब तक मुझे जो चीज चाहिए वो कृष्ण लेकर आ जाए, और कृष्ण नहीं लेकर आएंगे तो मैं गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूब जाऊंगा। महाप्रभु इतने खुश हुए, बोले श्रीवास तुम इतने महान भक्त हो, तुमको जो चीज चाहिए कृष्ण जरूर देंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। अगर इतनी गरीबी हो जाए कि लक्ष्मी देवी भी भिखारी बन जाए, मान लो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं डिप्रेशन आ जाए इकोनॉमी में कि रिजर्व बैंक भी बैंकक्रप्ट हो जाए, कुछ नहीं बचे, तो भी आपके घर में कोई कमी नहीं आई। कृष्ण बोलते हैं अनन्य चिंतयंतो मां, ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहां। कृष्ण बोलते मैं आपको लेकर। एक बार मुरलीधर प्रभु ने, मुरलीधर प्रभु यहाँ के काउंसिलर है, सीनियर भक्त, बंबई में एक प्रश्न पूछा सीनियर भक्त से, राधानाथ स्वामी महाराज से, किसका मतलब मैं भी अपना बिजनेस बंद करके 1 2 3 कर सकता, उनके दांतों का क्लिनिक है तो कोई भी पेशेंट आए तो 1 2 3। उसका जवाब मिला, अगर आपकी भक्ति उस स्तर पर है जो श्रीवास ठाकुर की भक्ति है तो आप 1 2 3 कर सकते, लेकिन आप स्तर पर नहीं है तो आपको अपने कर्तव्य करने चाहिए। गृहस्थ को कुछ धन तो कमाना चाहिए, गृहस्थ को समाज पे दूसरे पे भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। अब ब्रह्मचारी को मेहनत करनी चाहिए प्रचार करने में, पुस्तक बांटने में, मंदिर निर्माण में, किसी को आलसी नहीं बनना चाहिए, लेकिन साथ साथ इतनी एंजाइटी भी नहीं होनी चाहिए कि जब के समय हम हमेशा सोच रहे हैं कि कैसे धन आएगा। ये कर्मों के नियम के अनुसार आता ही है। तो पहला स्टेप यह है कि 2 घंटे या किसी को 2.5 भी लग सकते हैं, किसी को 1.75 लग सकते हैं, डेढ़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1.5 घंटे से भी कम हो रहा है मतलब राजधानी एक्सप्रेस जप है। राजधानी ट्रेन ज्यादा रुकती नहीं है, बंबई से बड़ौदा, बड़ौदा से रतलाम, फिर रतलाम से दिल्ली, रतलाम से कोटा, फिर दिल्ली। हमारा क्या, हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा, ये मंत्र एक्सप्रेस मंत्र। अभी मैं निंदा नहीं करता, मैं स्वयं भी, मेरी भी एक गलती होती है, मैं यहाँ पे आसन में बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, कभी मत सोचिए कि मैं परफेक्ट हूं, मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा हूं, मैंने भी देखा है मेरे से भी गलती होती है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप भगवान के लिए बहुत पुकार रहे हो तो उच्चारण चूक जाते हैं, तो फिर ठीक है, कभी कभी जैसे आप पुकार रहे हे राधे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, तो कभी कभी ऐसा हो जाए, लेकिन जनरली हमें कोशिश करना चाहिए कि हर एक शब्द का उच्चारण ठीक से हो और सुनना भी चाहिए, साथ से बोल रहे हैं और सुनना चाहिए, उससे मन केंद्रित हो सकता है। जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं तो मन उसमें केंद्रित हो जाता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, सब केंद्रित है, लेकिन अब मेरी आंखों से मेरे को देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन अगर बीच में मैं 2 मिनट के लिए नीचे उतर जाता हूं और कहीं जाता हूं तो सब यहां पे बातें शुरू हो जाएंगी। देखा है आपने, 2 मिनट के लिए कभी जैसे लेक्चर खत्म होता है और कीर्तन शुरू होता है, उसके बीच में ऐसा लगता है कि मार्केट खुल गया है। नहीं, देखा आपने, जब कीर्तन के लिए बोलते हैं सब लोग खड़े हो जाओ तो, क्योंकि माइंड को थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है, तो माइंड को एकदम कंट्रोल में रखना, और कंट्रोल में कैसे रहेगा, श्रवण के द्वारा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी आसान नहीं है, आसान नहीं है, जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं, बोलना आसान है, क्या करो, बोलो और सुनो। एक बार प्रभुपाद से किसी भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद दिस चैंटिंग हरे कृष्ण इज नॉट वेरी इजी, ये हरे कृष्ण जप करना ये कोई आसान नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, आई सेड इट इज सिंपल नॉट इजी, ये सरल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन सब जगह पर भागते हैं। आप ऐसे बैठे हैं समझो, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, या आप कुछ नहीं कर रहे घर में, अखबार पढ़ रहे हैं, तो मन ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप बीड बैग उठाओगे और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने तृणावर्त करेंगे, जो तृणावर्त भगवान कृष्ण को ऊपर ले गया था वैसे हमारा मन भी अलग अलग जगह पर चला गया। लेकिन भगवान गोपीनाथ वो शक्तिशाली है, वो तृणावर्त, भगवान कृष्ण बहुत शक्तिशाली है और वो तृणावर्त असुर का वध कर देते हैं। ऐसे अगर हम कृष्ण का नाम का आश्रय लेते हैं तो हम अपने मन को वश में कर सकते। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा कहते हैं, नामाश्रय कोरी यतन तुमी थाकह आपन काजे, इसका इंग्लिश में अनुवाद है, टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम, नाम का आश्रय लेना, नाम का आश्रय। जैसे अभी हम बरसात जा रहे हैं और अचानक बरसात हो जाती है, अभी दोपहर के समय मैं जा रहा था, अचानक बरसात हो गई, देखा आपने आज दोपहर को, कभी कभी अनप्रडिक्टेबल होते हैं। तो बरसात हो जाए, आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे? अब नियरेस्ट जो भी छत है वहां भागोगे, उसका आश्रय लेना। जैसे वृंदावन में जब इंद्र ने मुसलधार बरसात की, सब ब्रजवासी दौड़ते हुए गए गिरिराज गोवर्धन के आश्रय में। तो हरि नाम जो गिरिराज गोवर्धन की तरह, नाम और कृष्ण और गोवर्धन तीनों एक ही है। तुम्हें नाम का आश्रय लेना है। और आश्रय लेने का मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद का एक मैं सेंटेंस बताऊंगा। प्रभुपाद यहां पर एक वाक्य में बताते हैं, अ डिवोटी शुड फील दैट आई एम ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड माई ओनली होप इज कृष्ण। तो नाम जप में यह विचार होना चाहिए कि मैं संसार सागर में डूब रहा हूं और मेरे लिए और कोई आश्रय नहीं। कल मैंने आपको बताया था कि शचिनंदन स्वामी महाराज का एक पॉइंट मैं वो रिपीट कर रहा हूं। सचिनंदन महाराज अपने उदाहरण से बता रहे थे, जर्मनी के पास में एक नदी में स्विमिंग कर रहे थे और अचानक उनको लग रहा था मैं अच्छा तैर रहा हूं, लेकिन अचानक वो डूबने वाले थे और तब वो पुकारने लगे, मैं सचिनंदन महाराज, मैं तो वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहता था, ये कहां पर आ गया, भगवान बचाओ बचाओ। फिर ऑफकोर्स भगवान की आवाज सुनाई पड़ी और वो लहरों ने उनको वापस ले आए। लेकिन ये मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है जब में कि मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूं। और ये मेडिटेशन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टक में दिया गया, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत्य। अई बोलते हैं ओ, अरे नंद तनुज, हे नंद नंदन, मैं इस भवसागर में डूब रहा हूं, आप मुझे बाहर निकालें। अर्थात नाम जप को एक संबोधन के रूप में करना चाहिए, संबोधन। जैसे मैं बोल रहे थे वृंदावन आनंद देख रहा हूं, वृंदावन प्रभु सामने बैठे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य उनको बुलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना। लेकिन मैं एक बार भी बोलता हूं वृंदावन प्रभु, तो वो देख सकते हैं कि मेरी क्या भावना है। लेकिन तो ये तो एक जीवात्मा है, अगर एक जीवात्मा भी आपकी भावनाओं को समझ सकता है तो परमात्मा या भगवान कृष्ण कितना समझ सकता है। इन अदर वर्ड्स, द होली नेम शुड बी चैंटेड विद फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स पे ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वृंदावन प्रभु ने मुझे प्रॉमिस किया कि अगले सेमिनार में वो डिस्कस करेंगे अटेंटिव चैंटिंग, है ना। अटेंटिव चैंटिंग हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, मतलब मैं जो करूंगा वो नहीं करेंगे, वो जो करेंगे और कोई कोई चीजें कॉमन होंगी, क्योंकि कृष्ण भक्ति से वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे मेरे प्रवचन के बाद आपको वृंदावन आनंद प्रभु और डिटेल में ज्यादा हायर टॉपिक्स बताएंगे कॉन्सेंट्रेशन के। एक्चुअली उनका ही टर्न था बोलने का, लेकिन उन्होंने, मैं आ रहा था इसलिए नम्रता से उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूं वो फीलिंग्स के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है और प्रभु ये डिटेल में बताएंगे आपको उसके बारे में, और मैंने भी 5 मिनट बताया शुरुआत में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है कि भगवान को पुकारने की भावना। चाहे आप में से कई पिता या माता हैं, आपके लड़के का नाम क्या है? नील माधव प्रभु कितने, 1 साल? 1.5 साल के। 1.5 साल का बच्चा कैसे पुकारता है, और 1.5 साल से भी छोटा, 1.5 साल में थोड़ा बदमाश बन जाता है। मान लो बच्चा 2 महीने का है, नहीं 1 महीने का बच्चा है, तब कैसे उसकी स्थिति होती है? वो लाचार होता है। अभी ये बात हमने कई बार सुनी है, इसे मेडिटेट करिए कि कैसे एक छोटा बच्चा मां के लिए पुकार रहा है, वैसे हमें भगवान को हेल्पलेसली पुकारना कि कृष्ण आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। हा प्रभु नंद सूत विषभानु सूतयुत करुणा गोरो एई बारो, हे नंद सूत, गोपीनाथ यानी नंद सूत या श्याम सुंदर, राधा रानी मेरे ऊपर दया कर। जैसे एक अर्नेस्ट डिजायर, एक सिंसियर डिजायर के साथ भगवान को पुकारना है कि कृष्णा आप मुझे अपने चरणों में ले लो, मैं डूब रहा हूं इस संसार में। कई बार ऐसा होता है ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारा ध्यान से जप हो रहा है लेकिन हम भगवान को पुकार नहीं रहे, कई बार हम पुकार रहे हैं लेकिन ध्यान से सुन नहीं रहे। तो कोशिश करना चाहिए दोनों चीजें करें, हम सुन रहे हैं साथ में पुकार भी रहे हैं। खाली सुन रहे होंगे तो वो पैरट की तरह हो जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, मतलब वो अच्छा है लेकिन पुकारने की भावना के साथ। क्योंकि जब मृत्यु का समय आएगा तो शरीर बहुत जीर्ण हो जाते, जनरली मृत्यु के समय शरीर में कोई ना कोई कठिनाई होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ द बॉडी इज फिल्ड विद म्यूकस कफ और बाइल और वात पित्त कफ सब डिस्टर्ब हो जाते, बहुत डिस्टर्ब। आपने देखा है किसी को शरीर छोड़ते हुए, तब देखेंगे शरीर की स्थिति बहुत जीर्ण हो जाती। प्रभुपाद जी लिखते हैं टू रिमेंबर कृष्णा एट दैट टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। उस स्थिति में कृष्ण को स्मरण करना बहुत मुश्किल है, बट आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बट बाय द ग्रेस ऑफ कृष्ण इट बिकम्स इजी। कृष्ण की दया से वो आसान हो जाता है, अर्थात इसमें दया की जरूरत है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन टीचर लीनियंट होता है, ग्रेस मार्क्स देते। आपने थोड़ा भी लिखा 25 मार्क्स का लिखा तो 10 टीचर की तरफ से डाल के 35 मार्क है, ग्रेस। तो नाम जप का मतलब है कॉलिंग फॉर डिवाइन ग्रेस, कृपा के लिए पुकारना, एक भिक्षुक की भावना में रहना। इसलिए मैं ये सलाह देता हूं कि हमें भक्तों के साथ में जप करना चाहिए और कभी कभी थोड़ा सा अलग भी करना चाहिए थोड़ी देर। इसे मैं जहां भी ट्रेवलिंग करता हूं मैं भगवान गोपीनाथ का एक फोटो रखता हूं अपने साथ में, जो भी आपके इष्ट देव है। और कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं गोपीनाथ को देख के प्रार्थना करता हूं, हे गोपीनाथ हे राधा रानी मैं तो बहुत तुच्छ जीव हूं, मेरे लिए माया को पार करना ऐसे जैसे कोई छोटे बच्चे के लिए कोई फाइटर से लड़ना, मोहम्मद अली या दारा सिंह, मैं कुछ नहीं हूं कृष्ण मेरे को मदद करो। तो नाम जप का मतलब है हमारे अंदर हृदय में स्थित परमात्मा को मदद मांगना। सेवा में एफिशिएंसी एक जरूरी चीज है, सेवा में अच्छाई से करना वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भक्त को जानना चाहिए कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज सवेरे हम पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी की वो प्रार्थना जिसमें प्रभुपाद जी जलदूत में जब पहुंचे अमेरिका, प्रभुपाद लिख रहे थे मेरी कोई योग्यता नहीं है, अगर आप कृपा करोगे तो आप मेरे मुंह में ऐसे शब्द दे सकते हो जिसके द्वारा मैं सबको मदद कर सकूं। से नाम जब शुरू करने से पहले गुरुदेव से, श्रील प्रभुपाद से और हमारी पूरी परंपरा से, छठ गोस्वामियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को दया करो। यहां पर मैं जिस किताब के आधार पर आज क्लास ले रहा हूं वो महानिधि महाराज ने लिखी है, श्रील प्रभुपाद के सीनियर शिष्य हैं। और इस पुस्तक में वो बताते हैं एक भजन भक्ति विनोद ठाकुर का, जो नाम जप के पहले, नाम जप के पहले अगर 5 मिनट आप प्रार्थना बिताओगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है, तो समय एक्स्ट्रा लगेगा। या एंड में भी थोड़ा प्रार्थना करो, जैसे आप प्रसाद बनाते हो तुमने अपने अच्छी सब्जी बनाई है तो एंड में थोड़ा समय और लगता है तड़का लगाने के लिए, है ना, थोड़ा घी और, या अगर कोई सोचे कि मैं टाइम बचाऊंगा मैं तड़का नहीं लगाऊंगा नमक नहीं डालूंगा तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा, तो लास्ट में थोड़ी प्रार्थना करना हेल्पफुल है। वो कुछ प्रार्थनाएं ये श्रील प्रभुपाद जी के टीचिंग से मैं आज आपको बताऊंगा। इसके बीच में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो कृपया आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है ये कोई, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जप में सुधार हो, ये टेक्निकल क्लास नहीं। आपको कुछ भी सुझाव भी हो, कोई आपको प्रैक्टिकल सजेशन हो तो आप कृपया बता सकते हैं। एक और पॉइंट ये प्रार्थना पे आने से पहले, मैंने कल आपको बताया था न्यू वृंदावन अमेरिका में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जहां पर 24 घंटे कीर्तन हुआ, 24 आवर्स। और 24 घंटे कीर्तन होने के बाद में कोई सीनियर शिल प्रभुपादी के शिष्य सोलिनस जयपतक स्वयं महाराज सुनित राधना स्वयं महाराज कई शिष्य बोल रहे थे, तो उसके दौरान एक पॉइंट जो बताया गया था कि कैसे भगवान को पुकारना है हेल्पलेसली, मैंने कल बताया था शायद, कल नहीं बताया, आज सुबह थोड़ा बताया था लेकिन सब नहीं थे इसलिए हाँ या तो उसमें से एक पॉइंट है कि द्रौपदी भरी सभा में उसकी बेइज्जती हो रही थी। आप जानते हैं एक स्त्री के लिए भरी सभा में बेइज्जती होना कितना मृत्यु से भी बुरा है, स्पेशली उस जमाने में, और द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, द्रौपदी पांडवों की रानी थी, एक रानी ने बड़े ऊंचे और भरी सभा में ऐसे। तो द्रौपदी ने पहले तो अपने पतियों को देखा, उसके पति भी साधारण पति नहीं थे, अब जैसे माताएं मान लो आपका पति भीमसेन हो कितना सुरक्षित लगेगा, नहीं गदा लेके अगर भीमसेन घूम रहे हो या अर्जुन हो गांडीवधारी या नकुल सहदेव। द्रौपदी ने पहले पतियों की ओर देखा लेकिन सब सारे पति मुंह नीचे कर दिए, नीचे मुंह नीचे झुका दिए, और फिर द्रौपदी ने अपने हाथों से अपने वस्त्रों को संभालने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तब द्रौपदी ने जान लिया कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ, भक्ति का एसेंस ये एक लाइन में है कि कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ। तब उसने हाथ ऊपर करके पुकारा, हे कृष्णा, अभी ऐसे मैं बोल नहीं रहा लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप स्थिति में अगर होते तो इतना धीरे नहीं बोलते, आप जोर से बोलिए, हे कृष्णा,
हे कृष्णा,
हे गोविंद,
हे गोविंद।
जब द्रौपदी ने हे कृष्णा हे गोविंद पुकारा तो कृष्ण प्रकट हुए वस्त्र के रूप में। कृष्ण अनंत है और जब कृष्ण वस्त्र के रूप में आते हैं तो वस्त्र भी अनंत हो जाते। कृष्ण हर चीज में, कोई उनको मात नहीं दे सकता, कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। कृष्ण के प्रकट होते ही दुशासन प्रयास कर रहा था लेकिन वो गिर पड़ा और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हम भी माया के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कृपया ये जानिए कि मैं जो बार बार बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सत्य है, कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है अपने प्रयास से, लेकिन अगर कृष्ण हमारे साथ में हो जाते हैं तो सफलता। जैसे देखिए महाभारत की लड़ाई में पांडवों की ओर से कितनी सेना थी, आठ, एक बढ़ा दिया आपने, सात अक्षर, और कौरवों की ओर से 11, और ये अर्जुन को मालूम था, भगवान ने अर्जुन को चॉइस दिया था, या तो एक तरफ मैं रहूंगा बिना अस्त्र के और दूसरी तरफ नारायणी सेना रहेगी, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे आप ही चाहिए, और दुर्योधन मन में सोचा वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को क्यों चुना, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्, जहां पर कृष्ण है वहां पर सफलता है। ऐसे यहां पर कली काले नाम रूपे कृष्ण होते, अगर हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, जैसे अर्जुन ने कृष्ण की हेल्प ली, जैसे हम हेल्प ले रहे हैं तो हम भी विजयी होंगे। हम में से हर एक जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहा है, हर एक दिन युद्ध हो रहा है, हर एक दिन हर एक सेकेंड, और अगर हम कृष्ण को अपना सारथी बना रहे हैं नाम के रूप में तो हम सफल होंगे। इसलिए हमें कॉन्स्टेंट, जैसे अर्जुन के लिए गांडीव था, हमारा ये गांडीव है 108 मणि वाला गांडीव, और हर क्षण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। अर्जुन जब तीर चलाते थे ऐसे नहीं था कि अर्जुन एक तीर चलाते फिर सोचते बाद में रिलैक्स हो गए, नहीं। आपने महाभारत देखा है टेलीविजन के ऊपर, शायद एक्चुअल भी देखा होगा पता नहीं, लेकिन टीवी पे देखा होगा आपने या सीरियल में, अर्जुन जब तीर चलाते तो सर्कल कर ऐसे नहीं कि थोड़ा करते फिर थोड़ा देखते थोड़ा शरबत पी लिया बीच में रिलैक्स हो गए। ये दो घंटे, मैं नहीं बोल रहा 24 घंटे, 24 घंटे तो हायर स्टेट है, लेकिन आज हम डिस्कस करें दो घंटे हमारे माइंड में ऐसे होना चाहिए कि मैं युद्ध में हूं, सामने दुर्योधन दुशासन भीष्म द्रोण सब सामने और मैं लड़ रहा हूं। ये खाली भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं वी आर वॉरियर्स, हम योद्धा हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर आध्यात्मिक योद्धा, और योद्धा की भावना होनी चाहिए। ऑफकोर्स योद्धा को कई बार घायल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी योद्धा का उत्साह नहीं खोता। तो पहला पॉइंट है जो मैंने बताया कैसे भगवान को पुकारना। और दूसरा उसका उदाहरण है वही द्रौपदी। द्रौपदी के दो उदाहरण है। एक बार द्रौपदी काम्य वन में थे। आपने काम्य वन देखा है? काम्य वन वृंदावन में ब्रज में एक वन है काम्य वन, जहां जाते ही सारी कामनाएं पूरी हो जाती है, अध्यात्मिक कामनाएं, बिल्डिंग या बंगले की कामनाएं नहीं। तो काम्य वन में पांच पांडव और द्रौपदी थे और दुर्वासा मुनि, दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को बोला आप उनके पास जाओ और उस समय जाना जब द्रौपदी ने प्रसाद ले लिया। द्रौपदी के पास एक बर्तन था जिसको बोलते हैं अक्षय पात्र, और वो अक्षय पात्र से जब द्रौपदी प्रसाद ले लेती उसके बाद और कोई नहीं खा सकता कल तक, और जब तक द्रौपदी नहीं खाती तब तक कितने भी लोगों को प्रसाद दिया जा सकता। यहां पे रखना चाहिए जन्माष्टमी के दिन के लिए। इससे बहुत सबको प्रसाद भी मिलेगा और जो कुकिंग करने वाले वो भी प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं और खर्चा भी नहीं होगा। तो जानबूझ के दुर्वासा मुनि उसी समय आए जब द्रौपदी ने खा लिया था, और दुर्वासा मुनि के साथ एक छोटा सा ग्रुप भी था, कुछ लोग साथ में थे। कितने लोग थे? 60,000। समझो आज तो प्रसाद मेरे कहते 200-300 भक्तों के लिए बनाया होगा, लेकिन मान लो प्रोग्राम के एंड में दुर्वासा मुनि आते हैं मेरे से मिलने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए कोल्हापुर भक्तों को, हरे कृष्ण। और दुर्वासा मुनि फेमस है गुस्से होने के लिए, शाप देने के लिए, बहुत जल्दी शाप देते हैं। तो दुर्वासा मुनि आए और युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया, महाराज दंडवत आप प्रसाद लोगे? हम प्रसाद के लिए तो आए हैं। युधिष्ठिर महाराज फिर डर गए, आप स्नान करके आइए, यमुना स्नान करके आइए और फिर प्रसाद मिल जाएगा। यमुना स्नान करने गए और द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी कुछ प्रसाद है? दुर्वासा मुनि आए। द्रौपदी बोले कुछ नहीं। तब द्रौपदी ने कृष्ण को फिर से पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण प्रकट हो गए। आप बोलोगे प्रभु जी द्रौपदी तो बहुत शुद्ध भक्त थी, उसके बोलते ही कृष्ण प्रकट हुए, लेकिन मैं तो 16 × 108 कितनी बार पुकार रहा हूं, और मेरे को 20 साल हो गए पर्सनली, मुझे 21-22 साल हो गए 16 माला करते हुए, कभी कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। कहीं रॉन्ग नंबर एक डिजिट गलत हो गया होगा, मोबाइल में एक डिजिट गलत हो गया तो रॉन्ग नंबर हो जाता, तपासून पहा। एक्चुअली द्रौपदी के पुकारने में एक फीलिंग थी हेल्पलेसनेस की। आप भी कर सकते हो, अगर ये असंभव होता तो प्रभुपाद बोलते नहीं, कृष्ण बोलते नहीं। कई बार भक्तों को लगता है असंभव है, असंभव नहीं है। बोलते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन अ फूल्स डिक्शनरी, असंभव ये शब्द मूर्खों के शब्दकोश में। तो द्रौपदी ने पुकारा और कृष्ण फिर प्रकट हुए, और कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी मेरे को भूख लगी है, कुछ प्रसाद है? द्रौपदी बोली, कृष्ण कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने आपको पुकारा। नहीं देखो कुछ तो होगा, थोड़ा सा एक एक इतना सा दाना शाक का था भगवान कृष्ण को दिया। और भगवान कृष्ण ने खाया, उनको डकार, उनका पेट संतुष्ट हो गया। दुर्वासा मुनि एंड कंपनी सबका पेट फूल गया अचानक, सब 60,000 के 60,000 संतुष्ट हो गए। अब भगवान कृष्ण बोले भीमसेन को, भीमसेन जाओ सबको बुला कर ले आओ। भीमसेन बोले, प्रभु प्रसाद तैयार नहीं, कैसे बुलाऊं? भगवान बोले, हैव फेथ इन मी, माझ्यावर भरोसा कर, मा शुच। भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, इसे भरोसा कर। भीमसेन ने भरोसा किया। भरोसे फेथ का मतलब क्या है? जो चीज आंखों से नहीं दिखा रही उस पर भरोसा करना। सामने कार है और बोले आप कार में बैठो मैं ले जाऊंगा, तो स्वाभाविक है भरोसा करना, लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ रहा। बाइबल में एक कहानी है, जैसे कि एक बच्चा है, जैसे पिता नीचे है और अंधेरी रात है, पिताजी आवाज से बोल रहे हैं, तुम छलांग लगाओ मैं तुमको पकड़ लूंगा। और बच्चा पिताजी को देख नहीं रहा लेकिन खाली आवाज सुन रहे, तो आवाज छलांग लगाते हैं और पिताजी को उठा लेते। ऐसे हमको आवाज पे भरोसा करना है। आवाज शब्द ब्रह्मन। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बाइबल को कोट करते हैं, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। एक बार मैं भी जस्ट दो दिन पहले सुन रहा था, प्रभुपाद कुछ डिसाइपल्स को बोल रहे थे क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, बोले आपके बाइबल में लिखा है सृष्टि की शुरुआत शब्द से हुई और वो शब्द भगवान है और वो शब्द अल्टीमेटली हरि नाम है, हरि नाम कृष्ण है। अगर ये समझ में आ जाए तो बाकी सब बहुत इजी हो जाए। फेथ। आज हम सुबह प्रभुपाद की प्रार्थना पढ़ रहे थे जो उन्होंने लिखी थी जब वो अमेरिका पहुंचे बॉस्टन में। वो प्रार्थना थी, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। इस प्रार्थना में श्रील प्रभुपाद कह रहे थे, मेरे अंदर भक्ति नहीं है और मेरे अंदर वेद यानी ज्ञान भी नहीं है। हालांकि प्रभुपाद सबसे बड़े हैं यानी इतने सारे पुस्तक हैं, लेकिन मेरा नाम है भक्ति वेदांत सार्थक करो। हाँ, नामे खूब दारो, मेरे को नाम में श्रद्धा। करेक्ट, नाम में श्रद्धा। प्रभुपाद जी के दो गुण थे, नाम में श्रद्धा और गुरु के शब्दों में पूरा विश्वास। मैं ये थोड़ी सी घटना इसलिए बता रहा हूं जिससे आपके नाम में श्रद्धा बढ़े। क्योंकि श्रद्धा होगी तो हम पुकारेंगे ना, श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे पुकारेंगे। छोटे बच्चे को मां में श्रद्धा इसलिए मां को पुकार रहे हैं, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, कृष्ण मेरी मदद करेंगे। जब अभी कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद जी का संन्यास महोत्सव था, लेकिन तो ये शायद सोमवार के दिन है ना, विश्वरूप महोत्सव, जिस दिन श्रील प्रभुपाद ने संन्यास लिया, केशव घोड़िया मठ मथुरा में प्रभुपाद संन्यास ले रहे थे और एक भक्त यज्ञ कर रहे थे और पीछे कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद जब कीर्तन चल रहा था, हरे कृष्णा, सबको जगाने के लिए हरी हरी,
हरी हरी,
तो कीर्तन चल रहा था और जो यज्ञ कर रहे थे, कोई बात नहीं यहीं पे है जो कर रहा था वह तो कीर्तन चल रहा था और प्रभुपाद जी बोले उस कीर्तन करने वाले को, जोरा दो, जोर से कीर्तन। तो कीर्तन जोर से होने लगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
तो जो डिवोटी मंत्र बोल रहे थे यज्ञ कर रहे थे और पीछे मुड़े बोले, हड़ू हड़ू, थोड़ा थोड़ा कम कमी आवाज, कम आवाज, और आवाज कम हो गई और स्वाहा मम स्वाहा मंत्र बोल लगे और प्रभुपाद पीछे मुड़े जोर से बोले, जोर से। उस समय जो कीर्तन गा रहे थे वो प्रभुपाद जी के सीनियर गुरु भाई अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो बोले, उस दिन मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति हरि नाम पूरे विश्व में फैलाएंगे क्योंकि इनको विश्वास है कि नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बाकी चीजें महत्वपूर्ण है, डीटी वर्शिप, भगवान को सजाना फूलों से, ऑल्टर सजाना, पुस्तक वितरण करना, भक्ति शास्त्री कोर्स करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबका अंतिम उद्देश्य है नाम में श्रद्धा। मैंने वो कहानी बताई थी यहां पे एक सास और बहू के बारे में, यहां बताई थी। सास और बहू की लीलाएं तो बहुत सारी होती हैं, आप सब जानते हैं, मैंने सुनने से ही सीख लिया है। एक बार एक सास और बहू एक प्रवचन सुनने जाते हैं। एक प्रवचन, घर से जाते समय उनको नदी पार करना था, तो नदी पार करके एक साधु के प्रवचन चल रहा होता है, कई लोग बैठे होते हैं और प्रवचन में साधु बोल रहे होते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि नामे आनी आछे गौरंग निताई रे, कि हरि का नाम लो हरि का नाम लो, क्योंकि गौर और नित्यानंद प्रभु हरि नाम लेकर आए, हरि का नाम लो हरि का नाम लो। और फिर उसने बताना शुरू किया, हरि के नाम से अजामिल ने भगवान को प्राप्त कर लिया, हरि नाम से तो सागर को भी पार कर सकते हैं, एक डूबता हुआ व्यक्ति हरि को पुकारे और सागर पार। प्रवचन सुनने के बाद वो सास और बहू वो दोनों घर में वापस आ रहे थे, सून, मराठी में सून बोलते हैं ना, सून, सून सासू सुनू नहीं सुन मतलब बहुत जल्दी सुन एनीवे सास और बहू ज्यादा इजी है मेरे लिए। तो एक सास और बहू जब वो लौटने लगे तो नदी में पानी बहुत बढ़ गया था, तब कैसे नदी पार करी। बहू को याद था प्रवचन में साधु ने बताया था कि हरि का नाम लेने से बहुत सागर पार हो जाता, तो उसने विश्वास किया, भगवान गोपीनाथ के चरणों को याद किया और बोलने लगी हरी 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 बोला, और वास्तव में नदी में उसको थोड़ा रास्ता मिल गया और वो बड़े खुशी से पानी पार कर गया। और वो सास चिल्लाने लगे, अरे अरे मेरे को छोड़ के जा रहे हो, नदी कैसे पार करूं मैं। तो बहू ने बोला कि आपने सुना ना अभी प्रवचन कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लेते भवसागर पार हो जाते। सास बोले, अरे वो प्रवचन में बोलते हैं, ऐसा होता थोड़ी है। तो ये सुनने में भी अलग अलग अंतर होता है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं अभी शुद्ध नहीं हूं और मैं भी जो सुनता हूं पूरा विश्वास नहीं है, लेकिन विश्वास बढ़ रहा है धीरे धीरे, नाम जब करते करते विश्वास बढ़ता है। तो आप सबको भी अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए भगवान के नाम में, इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्तों के संग से विश्वास बढ़ता है, नहीं तो कोई बोल सकता है कि मैं हरि नाम घर में ही ले लूं, मुझे मंदिर आने की जरूरत नहीं है, रविवार कार्यक्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन संगति से विश्वास बढ़ता है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं तीन प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जो कनिष्ठ भक्त है उसकी श्रद्धा बहुत कोमल है, वो डगमगा जाता है। जो मध्यम भक्त है उसकी श्रद्धा स्ट्रांग है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और जो उत्तम भक्त है उसकी श्रद्धा भी स्ट्रांग है और शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण ने भीम को बोला जाओ, तो भीमसेन गए, भगवान बोले जाओ बोलो प्रसाद इज रेडी, प्रसाद तैयार है, और हां अपनी गदा को साथ में लेके जाना। तो गदा को साथ में लेकर गए, दुर्वासा मुनि को बोला प्रसाद तैयार है। और दुर्वासा मुनि सोचे अरे, सबकी ओर देखा, सब बोले गुरुदेव अभी तो भूख नहीं है। तो दुर्वासा मुनि बोले भीमसेन आप जाइए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। आप भीमसेन गए और दुर्वासा मुनि दूसरे रास्ते से निकल गए। तो ये भगवान ने रक्षा की। और तीसरी कहानी बहुत फेमस है गजेंद्र की, गजेंद्र हाथी। आपने कहानी सुनी होगी लेकिन मेडिटेट करिए जपा के समय, स्पेशली गजेंद्र बहुत प्रैक्टिकल है। कि जैसे गजेंद्र वो सरोवर में खेल रहे थे, शक्तिशाली हाथी गजराज वो इतना शक्तिशाली था, उसको देख के शेर भी पुसी कैट की तरह डर के मारे भाग जाते, बिल्ली की तरह शेर भी डरते थे उसे। जनरली शेर को राजा माना जाता है लेकिन गजेंद्र उसके भी राजा। गजेंद्र सरोवर में स्नान कर रहे थे परिवार के साथ, खुशी से थे, शायद रविवार का दिन था, बड़े आनंद से थे और एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। अचानक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसके पैर को पकड़ लिया, और आप सब कथा जानते हैं कि कैसे बहुत देर तक संघर्ष चलता रहा। हाथी बहुत शक्तिशाली था लेकिन पानी में मगर की शक्ति ज्यादा होती है, तो धीरे 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 गजेंद्र की शक्ति कमजोर हो गई। और शिल प्रभुपाद एक कहानी के परपट में लिखते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो मैं गजेंद्र कहानी पे 3 दिन क्लास लूंगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि वी आर लाइक दिस एलिफेंट गजेंद्र एंड दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज लाइक दैट लेक सरोवर की तरह, और माया देवी मगरमच्छ की तरह। तो अभी अगर देखो जैसे टूर्नामेंट में होता है, क्रिकेट में होता है, आप सब क्रिकेट सुनते होंगे पहले, नहीं अभी भी सुनते हैं पता नहीं, लेकिन क्रिकेट में ऐसा होता है जो होम टीम होती है उसको एडवांटेज रहता है कि नहीं। तो भारत अगर खेल रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, भारत में ही है तो भारत को थोड़ा एडवांटेज रहता है अपने पिच के ऊपर, करेक्ट नहीं, कोई हानि बोलना चाहता, डर रहे हैं कि मैं भी सुनता था पहले। एनीवे तो ऐसे हम लड़ रहे हैं माया के साथ, माया की भूमि में। अगर हम गोलोक में लड़ रहे होते तो बहुत आसान होता जीतना, क्योंकि हमारी हमारा सपोर्टर्स हमारे ही हैं, लेकिन अभी हम लड़ रहे हैं माया के विरुद्ध माया की भूमि में, इसलिए संघर्ष चलता रहेगा। गजेंद्र ने देखा कि मैं कमजोर हो रहा हूं। पूर्व जन्म में गजेंद्र एक वैष्णव थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न वे एक राजा थे और उन्होंने कोई श्लोक याद किए थे, तो वही श्लोक उन्होंने फिर से याद भगवान को प्रार्थना की। प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए डिवोटीज को नाम स्मरण ध्यान से करना चाहिए, जैसे श्लोक है नरसिंह प्रेयर या ब्रह्म संहिता याद रखना चाहिए, जिससे अगर मान लो इस जन्म में भगवत धाम नहीं गए, वैसे तो आप सब जा ही रहे हो कोल्हापुर के भक्त, लेकिन मान लो नहीं गए, ब्रेक जर्नी हो गया, तो अगले जन्म में जो भी आपने सुना है वो आपको याद रहेगा और आप उससे कंटिन्यू कर सकते। तो गजेंद्र ने बहुत सुंदर, गजेंद्र की प्रार्थना ही एक अध्याय है, प्रेयर्स ऑफ गजेंद्र एक पूरा अध्याय है। और गजेंद्र ने अंत में भगवान को एक फूल अर्पण किया, कमल का फूल, भगवान विष्णु तुरंत उसको स्वीकार किया, उसके गले को काट दिया मगरमच्छ को और अपनी भक्ति रक्षा की। एक्चुअली वो मगरमच्छ भी एक गंधर्व था, एक गंधर्व था, इसका नाम था हु, तो क्या नाम था हु, दो गंधर्व थे। तो ये हु जो गंधर्व था उसने एक ऋषि का अपराध किया था, तो ऋषि ने उसको शाप दिया तू मगरमच्छ बन जाओ, तो बोले नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे कोई बात नहीं, शाप तो मिल गया लेकिन भगवान विष्णु आपको उद्धार कर। और वो गंधर्व ने एक और अच्छी चीज की थी मगरमच्छ के रूप में, उसने गजेंद्र हाथी के वैष्णव के चरण पकड़ लिए थे, चाहे गुस्से में पकड़ लिए थे, उसका अज्ञात सुकृति की प्राप्ति होगी। तो तीन कहानी ये हेल्पलेस पुकारने की, और भी कोई कहानी आपको याद हो तो आप वो कहानी को याद कर सकते हैं। मैं तो कई बार जप के समय से सोचता हूं कि नित्यानंद प्रभु की कहानी है। एक बार नित्यानंद प्रभु को डाकू आक्रमण करने आए थे, ये कहानी सुनी है आपने, जिन्होंने गौर कथा में बताते हैं, कितने भक्तों ने सुनी है ये कहानी, सुनी होगी। ठीक है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। नित्यानंद प्रभु एक बार बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए, सोने के आभूषण पहने हुए थे, और कुछ चोरों का गैंग आया और उसने सोचा कि हम नित्यानंद प्रभु के आभूषण चुराएंगे। तो पहली बार उन्होंने एक जासूस को भेजा देखने के लिए नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु प्रसाद खा रहे थे, ठीक है प्रसाद खा रहे हैं, इसका मतलब बाद में सो जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि थोड़ी देर बाद वो सब चोरों को नींद आ गई, और फिर जब सुबह उठे तो तलवार वगैरह लेकर डर गए, क्योंकि वो चोर ऐसे थे, रात में चोर थे और दिन में अच्छे व्यक्ति थे किसी को पता नहीं चलता था। कुछ दिनों बाद फिर से आक्रमण करने आए, उन्होंने जासूस को भेजा नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं। तो उस समय क्या था कि नित्यानंद प्रभु की रक्षा के लिए बहुत सारे जायंट्स थे, जायंट को क्या बोलते मराठी, शक्तिशाली, लंबे तगड़े व्यक्ति थे, माथे पे चंदन, गले में माला, और सब पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग समझते हैं, जैसे सिपाही घूमते हैं, और सब बड़े उच्च स्वर में बोल रहे थे हरी हरी,
हरी, हरी।
तो उस समय भी वो आक्रमण नहीं कर सके। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं। तीसरी बार जब वो आक्रमण करने आए, एक्चुअली उन्होंने आक्रमण करने से पहले सोचा हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, चोरों के लिए आपके लिए नहीं, कोई भी शुभ कार्य मतलब चोरी करने से पहले दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दुर्गा देवी को ऑफरिंग किया, शराब और मांस का महाप्रसाद लिया, उसके बाद फिर आक्रमण करने, और इस बार जब आक्रमण करने गए तो सब एक गड्ढे में गिर गए, सारे चोर अंधे हो गए। कोई गड्ढे में गिर गया, किसी को लीच और जड़ू और कीड़ा काटने लगा, किसी के पूरे शरीर खून खून भर गया। और चोरों के नेता को समझ में आया कि नित्यानंद प्रभु साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने रो रोकर प्रार्थना की जय निताय,
जय निताय।
और जैसे उसने प्रार्थना की नित्यानंद प्रभु मुझे माफ कर दो, नित्यानंद प्रभु दया करो मेरे अपराधों को, सबकी आंखें वापस आ गई, सब जड़ू कड़ू सब चले गए, और बहुत सारे मच्छर थे सब चले गए, और वो चोरों ने माफी मांगी। तो कई बार मैं जब मैं कल्पना करता हूं कि मैं भी उस चोर के समान माया के गड्ढे में गिर गया, और मेरे गुरुदेव नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु मेरी रक्षा करेंगे अगर मैं सच्चे दिल से बोलूं हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये पहला पॉइंट है कैसे हेल्पलेसली भगवान को पुकारना, इसके चार उदाहरण है। इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले अगर किसी वैष्णव को कोई प्रश्न हो या कोई भक्त कुछ कमेंट्स करना चाहे तो आप बता सकते। नंदन प्रभु लाइक दिस, आप नम्रता के कारण पूछ रहे हैं। अबाउट दिस.
कई भक्तों का प्रश्न है कि आप जो बोल रहे पुकारना चाहिए भगवान को, लेकिन हम जब कोशिश करते तो आर्टिफिशियल लगते हैं, उसमें कृत्रिम भाव रहता है.
हाँ, प्रश्न ये है कि कई भक्त प्रश्न करते हैं कि जब आप बोल रहे कि कृष्ण को पुकारना चाहिए, तो हम जब कोशिश करते हैं तो होता ही नहीं हमसे, और करने की कोशिश भी की तो बहुत कृत्रिम लगता है और नेचुरली फीलिंग ही नहीं आता है. इतना भी ध्यान किया मूर्ति के ऊपर ये बोल सकते, लेकिन वो फीलिंग से होता ही नहीं. कंडीशनिंग ऐसा हो गए हैं, इतना हार्ट ड्राई हो गए हैं, तो हृदय से वो पुकारना जो है पुकारना, और वो भी एक माला, दो माला, तीन माला, सोलह माला पुकारना, एक माला या दो मंत्र भी पुकारना, तो कैसे और कुछ था.
नहीं, मैं नहीं, मैं भी आपकी तरह एक साधक हूं, लेकिन मैं वही रिपीट कर रहा हूं जो डॉक्टर ने बताया है. लेकिन फैक्ट ये है, ऐसा नहीं कि हमें कल्पना करनी है कि मैं खतरे में हूं और एक्चुअली हम सब अच्छा है. ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज आर्टिफिशियल बोल रहा हूं. सत्य ये है कि हम सब डेंजर में है ही. जैसे अभी बताया जाए कि यह हॉल में एक बॉम्ब रखा गया, आजकल तो जमाना है बॉम्ब एक्सप्लोजन का, जानते कोई भरोसा नहीं. किसी का बैग पड़ा है यहाँ पर, अभी मैं रेलवे स्टेशन पे आजकल किसी का बैग रखो तो पुलिस आ जाती है तुरंत देखने के लिए क्या है बैग में. मैं दिल्ली से आ रहा था अभी, जस्ट यहाँ आने से पहले मैं रविवार को दिल्ली में था, सोमवार को. तो अगर बॉम्ब रखा भी है, चाहे वो 10 मिनट बाद भी बजने वाला हो, मतलब फूटने वाला हो, तो भी डर तो लगेगा. तो ये सत्य है कि मृत्यु आने वाली है, ऐसा नहीं. अभी मैंने बताया आपको, कल मैंने कहानी बताई, एक माता जी ने शरीर त्याग किया उससे पहले एक महीने पहले, और नहीं कोल्हापुर में हर दिन कम से कम कितने 10-20 लोगों की मृत्यु तो रोज हो ही रही है. तो ऐसा नहीं है कि हम जो कल्पना कर रहे हैं एक्चुअली डेंजर है नहीं, खाली थोड़ा बच्चे को डराने के लिए बोलते हैं ना, बेटा करो नहीं तो भूत आ जाएगा ना. तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली डर है. अगर आपकी आंखें खुली हैं, अगर आप ज्ञान की आंखों से देख रहे हो, तो हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे बकरी है, एक बकरी को मारा जा रहा है और दूसरी बकरी घास खा रही है, और तीसरी बकरी जो है वो अपने फैमिली के साथ घूम रही है, उसको पता नहीं है लाइन में हो. तो सत्य है ये, इज द नेकेड ट्रूथ ऑफ लाइफ, डेथ. अगर डेथ का विचार होगा तो जब अच्छा होगा, और ये बात सही है कि उतना इजी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं. मैं आपकी बात मानता हूं और मैं भी आपकी तरह संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन सत्य है कि हम डेंजर में हैं, है कि नहीं? What do you think? Danger is there. We may not be able to cry, but at least we can cry. भक्ति सिद्धांत ठाकुर से किसी ने पूछा, ये भी एक्चुअली इसी बुक में है, What if one cannot cry for Krishna? एग्जैक्ट वर्ड बोलूंगा. When a disciple asked, I have no feeling, I cannot cry for Krishna. मुझे रोना आता ही नहीं है. भक्ति ठाकुर बोले, If you cannot cry, then you cry that you cannot cry. आपको रोना चाहिए कि मैं रो नहीं पा रहा. देखो हमको भगवान से कितना प्रेम की कमी है. किसी का मोबाइल गुम जाता है लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन मैंने देखा है. और लैपटॉप गुम हो जाए तो और भी दुख होता है, और किसी के रिश्तेदार की मृत्यु हो दुख होता है, पत्नी की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए तो बहुत दुख होता है. कृष्ण हमारे प्राण धन है, उसके विरह में हमें कुछ दुख लगता ही नहीं है, क्योंकि हम अभी बहुत ही भगवान से बिछुड़ गए. तो रोना चाहिए, कृष्ण कब मुझे कृष्ण. वी शुड कल्टीवेट, ऐसे नहीं कि एक दिन में होगा, कल्टीवेट. जैसे आप बच्चे को बड़ा करते विकसित करना, तो बच्चे किसी संबंध स्थापित करते हैं, कोई रविवार को नया भक्त आते हैं, पहली बार आप मिलते हैं, फिर उससे बातचीत करते हैं. ऐसे भक्तों के भगवान के साथ अपने प्रेम को कल्टीवेट करना है नाम जो. और जब शुरू करने से पहले प्रार्थना करनी है कि मेरे को भगवान मेरे अंदर वो फीलिंग्स दो सेपरेशन के, से मैं पुकार सकूं. और भक्तों को याद करने से भी, हरिदास ठाकुर को याद करने से, रूप गोस्वामी को याद करने से, अपने गुरु महाराज को याद करने से, इससे भी ज्यादा लाभ होता है कि उनको पुकारने से कि मेरे को नाम में रुचि दो. जो मैं बता रहा हूं वो हाई सब्जेक्ट मैटर है, ये लास्ट पॉइंट है, वो हाई है. ये बेसिक टेक्निक्स तो इजी है, लेकिन ये पुकारना, ये हमें पता तो होना चाहिए कि क्या गोल है. हो सकता है इस जन्म में हम नहीं रो पाए. एक और बात है, चैतन्य भागवत में बोला गया, कृष्ण बोलिए कांडिले से कृष्ण नाम मिले, धने कुले किचु नाही कृष्ण न भजीले। वन हु इज वीपिंग व्हेन ही चैंट्स कृष्णस नेम इज ट्रूली चैंटिंग। जो कृष्ण कृष्ण बोलकर रोता है वो वास्तव में भगवान को पुकार रहे। सिर्फ कुल से और पैसे से भगवान की प्राप्ति नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए। डेफिनेटली इजी नहीं है, ये कोई कृत्रिम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा लहसुन कांदा लगा के आए यहाँ पे ना ऐसे, या कई संस्थाएं और सिखाते हैं ऐसे कि आप जबरदस्ती रो और बाद में प्रोग्राम के बाद फिर वो बीड़ी पीते हैं, ऐसा नहीं। वी शुड नॉट इमिटेट बट वी शुड प्रे टू कृष्ण, कृष्णा प्लीज शो मी मर्सी विद मोर इंटेंसिटी, बहुत गहराई के साथ कॉन्सेंट्रेशन। और कोई प्रश्न है या कमेंट है? यस प्रभु।
अभी आपने बताया कि नाम जब बोले के बाद फिर प्रार्थना,
हाँ वो मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, या आज थोड़ा सा बताऊंगा, कल थोड़ा बताऊंगा, और अगली बार और बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आज और कल मैं पूरा कर दूं, क्योंकि पता नहीं अगली बार मैं कब आऊंगा, इससे पहले मृत्यु आसन। लेकिन ये प्रार्थनाएं हैं वो चैतन्य श्रीमद् भागवत के 7th कैंटो के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक आप लिख सकते हैं 7.5.32। ये आपने पूछा है तो मैं बता ही देता हूं अभी, क्योंकि सबके पास पुस्तक नहीं होगा। ये प्रार्थना है जो जप के बाद में बोलनी चाहिए, 7.5.23 श्लोक का नाम है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इसमें इसका इसका ट्रांसलेशन है। प्रभुपाद लिखते हैं दीज टू प्रेयर्स शुड बी चैंटेड आफ्टर फिनिशिंग चैंटिंग ऑफ द होली नेम इन ऑर्डर टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस। दो प्रार्थना, पहला है किसी को मालूम है कौन सा प्रार्थना? पहला है निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति निराजित पाद पंकज ऐ मुक्त कुले रूपशीयमानं परितस्त्वं हरिनाम संश्रयामि। इसका अनुवाद है हे हरिनाम, आपके चरण कमल के जो नाखून हैं उसकी पूजा उपनिषद भी करते हैं, नारद मुनि शुकदेव गोस्वामी और बड़े बड़े भक्त भी आपका गुणगान करते हैं। हे हरि नाम, मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं। ये पहली प्रार्थना। और दूसरा है निवृत्त तर्षे उपगीयमानात् भव औषधि श्रोत मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजते बिना पशुगुणात्। कि भगवान की परंपरा में गुणगान करना चाहिए, और वो गुणगान वो व्यक्ति कर सकता है जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। भगवान की कथा का गुणगान जन्म मृत्यु से पार ले जाते हैं। जैसे कृष्ण नाम है वैसे ही कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा श्रवण से व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। ये शॉर्ट में है, फिर बाद में हम डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन बीच बीच में और भी प्रार्थनाएं हैं, जैसे आई नंद तनुजे, या मन भाग रहे तो भगवान से प्रार्थना करो आपने तृणावर्त को मारा। तृणावर्त की कहानी सुनी है? जब भगवान गोपाल छोटे से थे तो भगवान वो तृणावर्त एक असुर आया, क्या बोलते हैं चक्रवादली, चक्रवादल ना चक्रीवादल, चक्रीवादल के रूप में, और कृष्ण को ऊपर लेकर गए। लेकिन कृष्ण पहले एकदम हल्के हो गए, बाद में बहुत भारी हो गए, और वो कृष्ण को हटाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कृष्ण ने गला पकड़ लिया था। कृष्ण ने पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं, अचानक इतने जोर से पकड़ा होता अंत में गिर पड़ा, उसकी मृत्यु होगी। तैसे ही हमारा मन भी तृणावर्त की तरह जो बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार इतने सारे से कभी कभी सागर में बहुत सारे लहरें आते हैं, कभी नीचे से दूसरे दूसरे लहरें ऊपर आ जाते हैं। ऐसे कभी कोई कोई बुरे विचार आते हैं जो हमने कभी सोचे ही नहीं होंगे, जब के समय विशेष आते हैं। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आप मुझे मदद करो, मैं अपने बल से नाम भी नहीं ले सकता, नाम जप करने के लिए भी नाम की कृपा चाहिए। श्री नाम प्रभु के चरणों में गिर के बोलना चाहिए हे नाम प्रभु, भगति विनोद प्रभु चरण पड़िया से हरि नाम मंत्र लोई लो मगिया। सुना आपने भजन, भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, जीव जागो गौर चंद्र मूल। इस भजन के लास्ट पॉइंट में वो बोलते हैं, भक्ति विनोद प्रभु चरण पोड़िया, भक्ति विनोद भगवान के चरणों में गिरकर ये महामंत्र को स्वीकार कर। सो वी शुड प्रे लाइक दिस इंटेंसली। और कोई प्रश्न है? यस माता जी। जब दुख होते हैं तो हृदय से रोना होता है, दुख नहीं होते तो
नहीं होते।
इसलिए आप भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, आपको क्या भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या दो मुझे, दुख या सुख? दुख दो। यस यस, आप कुंती महारानी के फॉलोअर हैं। कुंती महारानी भी ऐसे बोलती है कि मैं बार बार विपदि संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, बार बार दुख तो जिससे आपका स्मरण हो, सब कुछ अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपके आपके हाथ पे अच्छे चल रहे हैं, परिवार में संबंध बहुत अच्छा है और मलाई कोफ्ता खा रहे हैं, भगवान के ऊपर भगवान का नाम याद नहीं आया। लेकिन जब कठिनाई आएगी, चलना मुश्किल होगा, संधिवात बीमारी होने लगेगी, ठीक से देखने में मुश्किल होगी, चश्मा का नंबर बढ़ता जा रहा है और परिवार में थोड़ा झगड़ा हो रहा है, मतलब कृष्ण की कृपा हो रही है। अब ये मतलब नहीं है कि कृष्णानंद प्रभु जानवर की झगड़ा करा रहे हैं। मैं चाहता हूं सब सुख शांति हो, ऐसा होने वाला नहीं है दुनिया में, एटलीस्ट ये जन्म में नहीं, बैक टू गार्डन में सब हो जाए। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे दुख का ही को होए। तुलसीदास ने बोला है, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, दुख में सुमरण सब करते हैं लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख में करोगे तो भगवान दुख ही नहीं दे। लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है, कोई भक्त होते हैं जो एकदम प्योर होते हैं, वो सुख में भी भगवान को पुकार रहे होते हैं, लेकिन जनरली जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है। हर भक्त को भगवान एक कोटा देते हैं दुखों का, खाली गृहस्थ को नहीं, ब्रह्मचारी को भी अलग प्रकार के दुख, सन्यासी को अलग प्रकार के दुख, कई बार संस्था के अंदर, कभी संस्था के बाहर, कभी परिवार में, कई बार देशों के बीच में। अभी लैट्रिन में कितना भी सेंट डाला, परफ्यूम डाला तो सुगंध तो नहीं आने वाली, वो लैट्रिन ही है कि नहीं? ये मटेरियल वर्ल्ड लैट्रिन है, बस बाहर निकलने, ज्यादा कंप्लेन नहीं करें, निकलिए बाहर, निकलिए, गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भक्ति अगर बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस ऑफ जेंटल, तो भक्त के लिए भगवान विपत्ति ज्यादा देते हैं, वो फैक्ट है। एक बार एक डिवोटी न्यू वृंदावन में संस्था है, वहां पे 600 भक्त रहते हैं और बड़े करीब 200 एकड़ जमीन, सब इस्कॉन की जमीन, और बहुत सारे समस्या आ रहे थे। तो मैनेजमेंट के सब डिवोटीज जो मंदिर के मैनेजमेंट में थे, वो सब जाके एक 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 साधु से मिलने गए जो इस्कॉन के बाहर थे। उसके बाद गए कि हमको बहुत सारी समस्या आ रही है और आपके यहां भी भक्त रहते हैं और आपको कोई समस्या नहीं आ रही, बताइए क्या क्या आपकी पॉलिसी क्या है, मे बी हमारे मैनेजमेंट में कोई गलती हो रही है, बताइए कैसे सॉल्व करें। तो दूसरे स्वामी जी ने प्रश्न पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं? कहते हम राधा वृंदावन चंद्र, वहां डीटी का नाम है राधा वृंदावन चंद्र की पूजा करते हैं। उसने जवाब दिया, यही तो प्रॉब्लम है, हम तो शंकर जी की पूजा करते हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। शंकर जी के भक्तों को इतने प्रॉब्लम नहीं आते, कृष्ण के भक्तों को ज्यादा प्रॉब्लम है। शंकर जी के भक्तों को भौतिक सुख मिलता है और फिर बार बार जन्म लेना पड़ता है, कृष्ण के भक्तों को दुख मिलता है और बाहर निकल जाए। अगर आप जेल में हो, कैदी हो, तो क्या अच्छा है कि जेल में मलाई कोफ्ता मिले वो अच्छा है, आइसक्रीम, या जेल से बाहर निकल के कुछ भी मिल जाए कोई बात, लेकिन जेल से बाहर निकलना, जेल से बाहर निकलना तो भगवान की कृपा मान। और कोई प्रश्न है पीछे, किसी कोई प्रश्न? ओके, हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
गुरु कृपा का क्या महत्व है नाम जप में, ये महानिधि महाराज की किताब से मैं पढ़ रहा हूं। वो बोल रहे हैं, द ब्यूटी ऑफ भक्ति योग अनलाइक अदर योगा सिस्टम इज दैट प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्ण। जो दूसरी विधि है जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, प्राणायाम, है ना, रामदेव जी महाराज के यहां भी हुआ था ना, वो नाक दबाना, हवा अंदर बाहर करना, वो सब, इसमें इंडिविजुअल प्रयास में सफलता मिल जाती है। थोड़ा सा आप सीख लो, सीढ़ी भी देख लो, तो भी आप ऐसा नहीं कि आपको कृपा मांगनी पड़ेगी उनके चरणों में गिर के, कांडिया कांडिया नहीं, वो खाली सीढ़ी ले लो और थोड़ा सीख लो और आप सीख जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओ। ये भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में सफलता हमारी एक्सपर्टीज पे नहीं डिपेंड है। समझो कोई श्लोक अच्छे याद कर लेता है, बहुत बुद्धिमान है, शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाता है, जरूरी नहीं है इसको सफलता मिलेगी। आप जानते हैं दक्षिण भारत में वो ब्राह्मण था जो भगवत गीता पढ़ रहा था, है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, वो कौन सा मंदिर था, श्रीरंगम, श्रीरंगम मंदिर, और वहां पर वो ब्राह्मण भगवत गीता पढ़ रहा था, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, अनपढ़ था, बाकी लोग सब खिल्ली उड़ा रहे थे, मस्करी कर रहे थे, हाँ कितनी चांगला वास्ट हुआ, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ रहा हूं, श्लोक भी नहीं समझ में आ रहा था और बाकी अर्थ तो सोच। और चैतन्य महाप्रभु आए, देखो ओ एकदम गंगा और यमुना की तरह आंसू बह रहे हैं प्रेम के। महाप्रभु ने पूछा, ब्राह्मण कौन दशा हिल, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। ब्राह्मण बोले कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं ये गीता के 18 अध्याय पढ़ू, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मैं पढ़ रहा हूं। और महाप्रभु इतने खुश हुए, बोले आप गीता पढ़ने के अधिकारी हो क्योंकि आप गुरु के शब्दों में पूरा भरोसा कर ले। तो नाम जप में भी ऐसा ही है। मैं टेक्निक्स बताऊंगा अगले महीने वृंदावन अनंतर, वो और भी अच्छे टेक्निक्स बताएंगे, लेकिन ये टेक्निक से सफलता नहीं मिलेगी, टेक्निक का पालन करना चाहिए लेकिन सफलता मिलेगी गुरु की कृपा से। फिर आप बोलोगे फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं टेक्निक, क्योंकि वो भी हमारा कर्तव्य है। आपको हाँ हम प्रयास कर, आपको कहानी मालूम है, यशोदा माता कृष्ण को उखल से बांधते हैं, जब रस्सी से बांधते हैं, बांधने का प्रयास करते हैं तो रस्सी दो उंगली कम पड़ती, फिर और एक रस्सी ले आते हैं कोल्हापुर से, फिर दो उंगली कम पड़ती, फिर और एक रस्सी ले आते हैं, तीन रस्सी, चार रस्सी, पूरे गांव की सारी रस्सी, फिर भी दो उंगली कम। और आचार्य बताते हैं कि दो उंगली क्या है, पहला है हमारा प्रामाणिक रूप से प्रयास करना, सिंसियर एंडेवर, और दूसरा है गुरु कृपा या भगवान की कृपा। जैसे पिछली बार मैं यहां पर आया था तो मैंने भक्तों से निवेदन किया था कि मैं छोटी सी दक्षिणा मांग रहा हूं, यहां बताया था क्या दक्षिणा थी, हाँ सवेरे के नाश्ते से पहले, शाम के नाश्ते में सवेरे सवेरे उठ के जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जनरली 8 या 9 बजे करते होंगे, उससे पहले ही 16 माला करना। या आज के कई नए भक्त भी हैं, चाहे आप 16 नहीं करते होंगे, जितना भी आप करते हैं 1 माला 2 माला सुबह उठ के करना। तो ये हमारा प्रयास है, ये हमारा ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के जप करने से कृपा मिल ही जाएगी, नहीं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है करना, और मुश्किल नहीं है। मुझे कई भक्तों ने बताया कि उसके बाद जब उन्होंने ट्राई किया और हो गया, इसीलिए हो गया, ऐसे मुश्किल नहीं। कृष्ण टाइम के कंट्रोलर है, सब काल कृष्ण के हाथ में, तो कृष्ण आपको बुद्धि देंगे कि काल कैसे उपयोग किया जाए कि उनकी सेवा अच्छी से हो जाए। लेकिन कृष्ण नींद को भी कंट्रोल कर रहे, इंटरनल अलार्म होता है परमात्मा का अलार्म। अगर आप सोने से पहले खाली भगवान को प्रार्थना कर लो मुझे 4 बजे उठना है, आप उठ जाओगे 4 बजे। वृंदावन प्रभु तो 4 नहीं, आजकल 3 बजे उठ जाते हैं, 3 o'clock उठ जाए, 3:30 उठ जाते। दृढ़ संकल्प की बात, आप जो भी संकल्प करें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान, जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो शास्त्रों में कहा गया कि अगर आप भगवान की ओर 1 कदम रखते हो तो भगवान आपकी ओर 10 कदम। तो नाम जप करने में भगवान डेफिनेटली मदद करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें प्रयास करना है पहला, और फिर कृपा मांगनी। एक और पॉइंट महानिधि महाराज यहां पर बताते हैं, एक्चुअली एक श्लोक है शरणागति से, एकाकिया मार नहीं पाय बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। एकाकी अमार नहीं पाय बल, यानी अकेले मेरे अंदर कोई बल नहीं है, अकेले हरि नाम जप करने की मेरे में योग्यता नहीं, लेकिन गुरुदेव तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया, तुम कृपा करके मेरे को श्रद्धा दो। इसे मैंने शुरुआत में बताया श्रद्धा, श्रद्धा जो श्रद्धा है वो भी गुरु की कृपा से मिलती। एक बार एक शिष्य गुरु जी को बोलते हैं, गुरु जी आप बोल रहे हो हरि का नाम लो, वो धोबी हरि नाम ले रहे, वो रिक्शा वाला भी हरि नाम ले रहे, और यहां पे सब लोग हरि नाम ले रहे हैं, कुछ होता ही नहीं हरि नाम लेने से। गुरु जी बोले देखो तुम एक एक डायमंड हीरा दी, आप ये हीरा लेके जाओ और सबको दिखाओ, बोलो हीरा से आप क्या करोगे। हीरा बहुत मूल्यवान चीज है, वैल्यूबल, तो हीरा को लेकर गए, एक धोबी को दिया, आपको चाहिए ये? हाँ मुझे चाहिए। क्या करोगे? कपड़े पीटने में काम में आएगा, भारी होता है हीरा इसलिए। फिर एक रिक्शा वाले के पास गए, जो साइकिल रिक्शा, यहाँ कोल्हापुर में नहीं होता लेकिन दूसरी जगह पे साइकिल रिक्शा, उसके पास गए तो बोला हाँ मुझे उपयोगी होगा हीरा चाहिए। यस चाहिए, किस लिए? व्हील बैलेंसिंग में मदद होगा। और बच्चों को देखा है तो बच्चे बोले हम खेलेंगे। फिर वो एक ज्वेलर की दुकान में गए, ज्वेलर क्या बोले मराठी, सोनार के पास ले, सोनार में देखा तो बोले अमूल्य रत्न है, ये तो अमूल्य रत्न है, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। तो वापस आया और गुरुजी को बताया, गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले गुरुजी सब लोग वो रत्न चाहते हैं लेकिन सबको उसका महत्व नहीं पता है। ऐसे ही हम हरि नाम लेते हैं, वैसे कल मैंने बताया था कैसे भी आप हरि नाम लो लाभ मिलता है, नहीं मैंने बताया था हरे राम हरे कृष्ण कैसे, लेकिन हराम बोलने से, और हरे राम हरे कृष्ण की कहानी बताया था। लेकिन जिस तरीके से आप श्रद्धा से अगर हरि नाम लोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, अटेंशन से लोगे श्रद्धा से लोगे ज्यादा लाभ मिलेगा। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो उन डिवोटीज के लिए जो ऑलरेडी नाम जप कर रहे हैं, तो कैसे वो जप को और ज्यादा श्रद्धा से ले सकते। तो गुरु की फोटो है वो भी गुरु के समान है, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद से स्पेशली प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं, चलो प्रभुपाद मुझे नाम जप में ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दो, बाधाओं को दूर कर दो, तो सब बाधाएं दूर हो जाए। कई प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गोस्वामी से प्रार्थना करना। हम जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भक्त हैं, हमारे लिए सबसे पूजनीय है वृंदावन के 6 गोस्वामी, जिनका फोटो आप राइट साइड में देखिए, नरसिंह भगवान के नीचे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए चाई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां हुई ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। तो ये जो 6 गोस्वामी है, श्री रूप और सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके बारे में कहा गया है इनको याद करते ही सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं, विघ्न नाश। जैसे कई बार मंदिरों के एंट्रेंस पे गणेश जी की मूर्ति होती है, गणेश जी से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि नाम जप में बाधाएं दूर करो, ये नहीं कि इनकम टैक्स के लोगों को दूर रखो भौतिक चीजों के लिए नहीं, ऐसे स्पेशली 6 गोस्वामी से। और मैं तो हरिदास ठाकुर को भी प्रार्थना करता हूं, हरिदास ठाकुर नामाचार्य, जैसे जो चीज आप सीखना चाहते हो उसमें सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति है उसकी कृपा मिलनी चाहिए। आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो जो तो कोल्हापुर में सबसे बड़ा कंप्यूटर जो टीचर है उससे मदद लेनी चाहिए। तो नाम के आचार्य हैं हरिदास ठाकुर, कल मैंने बताया था उनके बारे में। तो अगर आपके घर में उनकी फोटो है या समाधि की फोटो है या मन में आप उनको सिद्ध बकुल को याद करके प्रार्थना कर सकते हैं कि हरिदास ठाकुर मैं एक नया शिष्य हूं, आप टीचर हो आचार्य हो और मैं शिष्य हूं, मुझे नाम जप करने की शक्ति दो। अभी आप बोलोगे ये सब प्रार्थना करेंगे तो जप में टाइम बहुत लग जाएगा, है कि नहीं? पहले हमारा यू नो टाइट स्केड्यूल है, लेकिन थोड़ा समय जरूरी है कोई भी चीज के लिए। अगर बच्चों को बड़ा करना है थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, ऐसे मन को ट्रेनिंग देना है नाम जप के लिए तो थोड़ा समय निकालना, इसे परफेक्शन मिल सके। अगर हम प्रार्थना के साथ करेंगे तो जल्दी परफेक्शन मिल सके। अल्टीमेटली आप जैसे भी जप करोगे अंत में कृष्ण मिलेंगे, वो बात सही है। फिर एक कोर्स की क्या जरूरत है, नहीं अंत में तो कृष्ण मिलना ही है, चाहे एक जन्म बाद मिले या 100 जन्म बाद मिले, राइट सुरेश प्रभु? क्या जल्दी है, कोई जल्दी है क्या? जल्दी क्या, अरे क्या, भगवान तो वही है, दुर्घटना से देर भली हड़ू हड़ू, व्हाट इज द लॉस? क्या जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा तब तक। एक बार एक भक्त से प्रश्न पूछा गया था कि अगर भगवान को प्राप्त करना ही है तो नाम जप में तीव्रता की क्या जरूरत है, धीरे धीरे जाएंगे? जवाब है कि मान लो आपको कोई बीमारी हो गई है जिसमें बहुत कष्ट है और ऑपरेशन की जरूरत है, एपेंडिसाइटिस से कोई ऑपरेशन, उसी दिन में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जी आपका ऑपरेशन होना है लेकिन मैं अभी 15 दिन के लिए गोवा जा रहा हूं और बाद में उतना ही फीस लगेगा, ऑपरेशन हो जाएगा, तब तक आप आनंद से तब तक आप रहिए यहां पर, तब आनंद से नहीं रह सकते, तो कष्ट बहुत उठाना पड़ेगा। ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए कि यही जन्म में पूर्णता मिल जाए, और नाम जप के समय सोचना चाहिए कि हर बीड पे, हर मोती पे सोचना चाहिए कि मेरा आखिरी मोती हो सकता है, आखिरी मोती हो सकता है। आई शुड बी वेरी अटेंटिव। मैं एक 4 वाक्य बोलूंगा जो कृष्णा पुस्तक से है। आप में से कितने के पास है किताब है कृष्णा हाथ ऊपर करी? सभी के पास है। एक बार नहीं है आप लेके जाइए, आज जरूर लेकर जाइए। उसमें बताया गया इंट्रोडक्शन में 4 सेंटेंस प्रभु बोलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, एवरी पर्सन शुड बी कॉन्शियस ऑफ डेथ एट एवरी मोमेंट। हर व्यक्ति ने हर क्षण मृत्यु को याद करना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस, इट डज नॉट मैटर वेदर वन इज यंग और ओल्ड। ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई बूढ़ा हो या जवान हो, किसी की भी मृत्यु आ सकती, डेथ कैन कम एट एनी टाइम। तीसरा वाक्य, लास्ट सेंटेंस, लास्ट वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, बिफोर डेथ कम्स वन मस्ट बिकम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। मृत्यु येण्याचे अगोदर आपण सर्व शुद्ध भक्त पूर्ण कृष्ण भावन भावित, मतलब शुद्ध नाम जप करना। अभी नेक्स्ट टाइम जब और टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे शुद्ध नाम का मतलब क्या है। नाम जप में 3 स्टेजेस हैं, एक है अपराध के साथ जप, दूसरा है अपराध के बिना जप, और तीसरा है शुद्ध नाम। तो हमें शुद्ध नाम तक पहुंचना है, इसलिए थोड़ा अर्जेंसी। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। गोस्वामियों के बारे में कोई प्रश्न है किसी को? पीछे किसी को कोई प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? पीछे कोई शंका है? मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा, मुझे 2 दिन में कवर कर ले, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, तो नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। एक और पॉइंट है जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करना। जनरली हम नरसिंह से प्रार्थना करते हैं जब कोई हॉस्पिटल में होता है, आईसीयू में कोई चला जाए तो नमस्ते नरसिंह आए, या अगर ड्राइवर बहुत स्पेशल हो तो कार चलाते समय नरसिंह भगवान याद आते हैं। लेकिन एक्चुअली फैक्ट है कि हमारे सबसे बड़ा डेंजर है कि हम कृष्ण को भूल जाएं, है कि नहीं? भक्त का सबसे बड़ा डर क्या होता है? कृष्ण को भूल जाए। इसलिए नाम जप के समय नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। नरसिंह भगवान को कहा जाता है विघ्न विघ्न विनाशक, है ना, विघ्न विनाशक। तो भगवान नरसिंह देव से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी नाम जप में विघ्न आ रहे हैं वो दूर कर दें, और नरसिंह भगवान मदद करेंगे डेफिनेटली। यस, एक प्रार्थना है जो भक्ति विनोद ठाकुर की किताब से है। नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नरसिंह देव, मेरे हृदय में 6 शत्रु निवास कर रहे हैं। आप जानते हैं आपके हृदय में 6 शत्रु हैं, चेहरा भूल गए, मित्रता हो गई उनके साथ। कौन से हैं छह शत्रु? हरी बोल, गुड फ्रेंडशिप। तो मेरे हृदय में नरसिंह भगवान ये छह अनर्थ हैं, उसके अलावा और भी है। और क्या है? प्रतिष्ठा की इच्छा, वो और भी मुश्किल है पार करना, प्रतिष्ठा। और दूसरा है इनसिंसियरिटी, प्रामाणिकता नहीं होना, डुप्लीसिटी, छल कपट। इसलिए हे नरसिंह देव, मेरे हृदय को शुद्ध बनाओ और मुझे राधा गोविंद की सेवा में आगे बढ़ने में मदद करो। क्योंकि नरसिंह देव हालांकि बहुत भयानक है, लेकिन भक्त के लिए बहुत प्रेममयी हो जाते, है कि नहीं? हिरण्यकशिपु का वो हार्ट ऑपरेशन कर देते हैं, उसका मार डालते हैं, लेकिन प्रहलाद को प्रेम दिखाते। ऐसे हम भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें जप के समय कि मेरे हृदय के सारे अनर्थों को दूर कर दो और फिर मैं सच्चे दिल से नाम ले सकूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। नेक्स्ट पॉइंट है गौर निताई से प्रार्थना करना, गौर निताई की या अपराध दूर करने के लिए। मैं एक लाइन गाऊंगा भजन का, दया निताय चैतन्य बोले नाचरे आमार मन, दयाल निताय चैतन्य बोले नाचरे आमार मन। नाचरे आमार मन, नाचरे आमार मन, नाचरे आमार मन, नचरे अमर मान, दया निताय चैतन्य बोले नचरे अमर मान, दया निताय चैतन्य बोले नचरे अमर मान, दया निताय चैतन्य बोले नचरे अमर मान। ये भजन आप सब जानते हैं, मैं खाली एक लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं है, कृष्ण नाम में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते तो भी अपराध होते हैं, लेकिन गौर निताई का नाम लेने से सारे अपराध दूर हो जाते हैं। विचार तो नहीं है,
विचार तो नहीं है,
ओ नामे अपराधे विचार तो नहीं
है,
तो कृष्ण नामे रुचि हवे रुचि बे बंदा, कृष्ण नामे रुचि हवे रुचि बे बंदा, दया गीताय चैतन्य बोले अमर मान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे विनोद ठाकुर के भजन से एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आज के ये पॉइंट में, कि गौर निताई का नाम लेने से सारे अपराध दूर हो जाते, और यही चैतन्य चरितामृत में बताया गया। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लेते प्रेम दे। मतलब अभी 10 ऑफेंसेस हैं, 10 नाम अपराध हैं, आप सब जानते होंगे, हम रोज गाते हैं लेकिन फिर भी करते भी हैं, नहीं जानते हो जाते हैं। जैसे एक अपराध है भौतिक विषयाशक्ति को बनाए रखना, हम कितना प्रयास करते हैं भौतिक आसक्ति नष्ट हो तो भी नष्ट नहीं होती, तो कैसे दूर होगा यह अपराध? गौर निताई से प्रार्थना कर। इसीलिए प्रभुपाद जी ने रूल बनाया कि जब भी हम माला जप शुरू करते हैं उसके पहले हम पंचतत्व का नाम लेते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवातादि गौर भक्त वृंद। और फिर उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र। ये पंचतत्व मंत्र आपको पता है किसने लिखा है? पंचतत्व मंत्र हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हैं, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, उन्होंने मंत्र लिखा है। इसमें क्या है? सब आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, श्रीवास, गौर भक्त। गौर भक्त ने क्या सबका नाम आगे, कोई अपराध नहीं हो, सब कोल्हापुर भक्त वृंद, सब आगे, सब गौर भक्त वृंद, सब सेंटर के भक्त, सब नवद्वीप के भक्त, वृंदावन के भक्त, पुरी के भक्त, गोलोक के भक्त, यमलोक के भक्त, सबका नाम, स्पेशली महाप्रभु के जो पार्षद। इसमें एक चीज बताया गया, रूपक गोस्वामी बताते हैं कि गुरु का आश्रय लेना जरूरी है भक्ति के लिए, नाम जप में। तो इसमें जो नित्यानंद का नाम आता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो नित्यानंद गुरु तत्व है, गुरु के आशीर्वाद से नाम जप अच्छा हो जाता है। तो जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं तो ऐसे मैं कंपलसरी नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास घर में फोटो है जैसे, तो फोटो की तरफ देखकर श्री कृष्ण चैतन्य को, नित्यानंद को देखकर अद्वैत गदाधर श्रीवास को देख सकते, या अगर कोई फोटो नहीं है तो मानसिक रूप से कि हम उनको प्रणाम कर लें। नहीं तो क्या होता है, श्री कृष्ण चैतन्य एक खाली एक मार्कर की तरह यूज करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरि बोल। वी आर नॉट रियली प्रेइंग फॉर मर्सी। हर एक चीज भावना पे निर्भर है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एसेंस इज फीलिंग, फीलिंग ऑफ लव फॉर कृष्ण, कृष्ण के और भगवान से प्रेम करना। अब इसके बाद श्रील प्रभुपाद मैं लास्ट पॉइंट पे पहुंचूंगा कि शचिनंदन गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना, ये भी हो गया। अच्छा, नाम जप शुरू करने से पहले भी भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं और नाम जप के एंड में भी। और मैं तो ऐसा करता हूं कि हर माला के एंड में थोड़ा 5-10 सेकेंड निकाल के थोड़ा प्रार्थना करें, कोई भी प्रार्थना। जैसे एक प्रार्थना है, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषम भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य। इस प्रार्थना का अर्थ है आई आई नंद तनुजा, मतलब हे नंद नंदन, मैं भवसागर में डूब रहा हूं, पतितम माम विषय सागर, कृपया आप दया करके मुझे इस भवसागर से बाहर निकालो और अपने चरणों में धूलिका कर। एक और प्रार्थना है जब के समय आप याद कर सकते हैं, नाहम विप्र नच नरपति नापि वैश्य न शूद्र नाहम वर्ण च ग्रहपति न वनस्त यतीर्वा। लास्ट लाइन गोपीर भरतूर पद कमलयो दास दास अनुदास। ये प्रार्थना करना कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं क्या हूं? दासानुदास। किसका? गोपीनाथ, गोपियों के जो स्वामी हैं उनके दासों का दास। एक और प्रार्थना जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, मैं बहुत जन्मों से आपसे बिछुड़ चुका हूं, अब मुझे तीन ताप बहुत पीड़ित कर रहे हैं कृष्ण, अब गुरु की कृपा से मुझे महामंत्र मिला है, आप मुझे शक्ति दो कि मैं ये महामंत्र ठीक से जप कर सकूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन जो आपको अच्छी लगे और जो आपके टाइम टेबल में फिट हो, या कभी कभी ऐसे कर सकते हैं एक दिन कुछ प्रार्थनाएं जो रोज करनी चाहिए, त्रिनादपि सुनिचे न, ये मैं डिस्कस नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूं आपको पता ही है, त्रिनादपि सुनिचे न तो रोज बोलना चाहिए, लेकिन ये बाकी प्रार्थनाएं जितना आपको समय मिले उसके अनुसार आप कर सकते। अल्टीमेटली ये सब प्रार्थना में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भावना त्रिनादपि सुनिचे न, त्रिनादपि सुनिचे न वो एक एंट्रेंस गेट की तरह है, गेट में गए तो बाद में अंदर जा सकते, त्रिनादपि सुनिचे न भक्ति में एंटर करने के लिए गेट की तरह, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते। अच्छा, एक बार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिले, आपको मालूम है रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप कहां पर हुआ था? कोवूर, कोवूर यह स्थान गोदावरी के तट पे है आंध्र प्रदेश में। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, उपास्य मधेर कौन उपास्य प्रधान, सब प्रकार के उपासना करने वाले चीजों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? और दामानंद राय बोले उपास्य मध्ये श्रेष्ठ राधा कृष्ण नाम, सब वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट्स में सबसे श्रेष्ठ है राधा और कृष्ण का नाम, मतलब हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
अब मैं आपको एक और पुस्तक से थोड़ा बताऊंगा जिसका नाम है सनत कुमार संहिता। ये किताब है ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने लिखी है, मनु संहिता मनु जी ने लिखी है, और सनत कुमार संहिता सनत कुमार ने। उसमें बोलते हैं कि ये कुछ प्रार्थनाएं हैं जो मानसिक रूप से आप याद कर सकते हैं। पहला है हे राधा रानी हे कृष्ण कृपया मुझे जन्म मृत्यु के सागर से बचाओ, कृपया मुझे घर परिवार और मित्रों के बंधनों से मुक्त करो। बोलने में डर रहे हो लग रहा है, नहीं तो डर लग रहा है कृष्ण प्रभु तो बोल रहे हैं, हम बोले कि नहीं बोले पता नहीं, भगवान ने सुन लिया तो ठीक है। आप डिसाइड करिए आपको बोलने कि नहीं, मैं खाली बता रहा हूं। हे राधा रानी
हे कृष्ण
इस जीवन में और बाद में
मेरा जो भी है
मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तीसरी प्रार्थना हे राधा रानी
हे कृष्ण
मैं अपराधों से भरा हुआ हूं, मेरा कोई और आश्रय नहीं है, मैंने सब कर्तव्यों को त्याग दिया है, मैं आपकी शरण में हूं। चौथा हे राधा रानी
हे कृष्ण
मेरा शरीर
मेरा मन
और वचन सब आपको अर्पण है। और पांचवा हे राधा रानी
हे कृष्ण
आप करुणा के सागर हो,
मैं आपकी शरण में आया हूं,
आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ये जो प्रेयर है लास्ट वाली प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हरे यानी राधा रानी और कृष्ण मतलब कृष्ण, तो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाओ। ते भावना से भगवान को पुकारना चाहिए कि मेरे को अपनी सेवा में लगाओ, ये नहीं कि हे राधा रानी हे कृष्ण कृपया मेरी सेवा करो, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा दो। तो किसी कोई प्रश्न है या कमेंट है जो आज चर्चा की इस पर? वृंदावन प्रभु लाइक टू कॉमेंट समथिंग। प्रभु जी मेरे को जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं वैसे प्रभु जी कौन, फिर भी पूछिए इफ इट इज प्लीजिंग टू कृष्ण।
हरे कृष्ण, जब करते समय कभी कभी भक्त जो है ये भावना से कि मैं सेवक हूं सेवा करना चाहता हूं, इससे ज्यादा उसका प्रयास ऐसा हो सकता है कि आनंद कैसे मिले, जब करते हुए वो तीव्रता से भी जब कर रहे तो वो सोच रहा है कि और तीव्रता से करूंगा तो हृदय में थोड़ा आनंद मिलेगा, तो आनंद के पीछे आनंद प्राप्त करने के लिए जब करता है शायद एक अच्छा स्तर भी हो सकता है, कम से कम वो हरिनाम में आनंद लेने की कोशिश कर, लेकिन वो जो लेकिन उसमें वो सेवा होना कम हो सकता है।
इसके 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 लिए मैं एक्चुअली एक पैराग्राफ पढ़ने ही वाला था, भगवान का अरेंजमेंट, आपने प्रश्न पूछा उसके बाद में एक पैराग्राफ है भक्ति विनोद।
और जब तक वो आनंद का अनुभव नहीं होता उसको लगता है कि शायद जब अच्छा नहीं हुआ, तो ड्राइनेस है अभी भी, वो आनंद चाहिए आनंद चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो आनंद नहीं मिलता तो और भी जोर से चिल्लाते हरे कृष्ण।
इसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जैसे हम कीर्तन भी गाते हैं कई बार कीर्तन गाने में आनंद आता है हमको, इसका मतलब ये नहीं कि कीर्तन नहीं गाना चाहिए। कई बार डिवोटी सोचते हैं कि मेरे को भक्ति यानी कोई आनंद नहीं लेना चाहिए, मुझे गाना अच्छा लगता है ठीक है मैं गाऊंगा नहीं, मुझे प्रसाद अच्छा लगता है मैं प्रसाद बिना नमक के खाऊंगा, ऐसे नहीं। तो आनंद आए तो अच्छा है, लेकिन आनंद आए या नहीं आए कृष्ण को आनंद मिलना चाहिए। भक्ति का मतलब है मैं जब इसलिए कर रहा हूं कि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं जब मैं ट्राई कर रहा हूं, कृष्ण ये नहीं देख रहे कि मैं सफल हूं असफल हूं, एक्चुअली कई बार ऐसा होता है हमारा जप अच्छा हो रहा है लेकिन हम प्रयास नहीं कर रहे, इजीली हो रहे, और दूसरा भक्त संघर्ष कर रहे हैं भगवान खुश करने का, भगवान उससे ज्यादा खुश है। तो हमारे को आनंद अनुभव होना, क्योंकि हमारा आनंद और निरानंद ये मेंटल स्तर पे होते हैं, कई बार हम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होते, और मन बहुत अच्छा होता है, घर में सब अच्छा चल रहा है तो हम आनंदित होते हैं, और किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए हम निराश हो जाते हैं। तो ये नाम जप है वो इन चीजों से परे है। नाम का असली आनंद जो है वो तब प्रकट होता है जब हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब तक नाम जप में शायद हमें आनंद अनुभव हो या नहीं हो, हम संघर्ष करते रहें। जैसे एक खिलाड़ी होता है जो प्रैक्टिस कर रहे, सफलता मिले या नहीं वो प्रयास करता रहता है, ऐसे हम प्रयास करते रहेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भक्तिधाम ठाकुर बोलते हैं, वो बोलते हैं द होली नेम इज लाइक अ कैप्सूल। आपने देखा है वो जो दवाइयों का कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल में वही कैप्सूल में आप दवाई भर सकते हो और उसी कैप्सूल में जहर भी भर सकते हो, और बाहर से वही लाल और काले रंग का कैप्सूल है, एक में दवाई भरी है और एक खाली है और तीसरे में जहर भरी। तो हरे कृष्ण सब बोल रहे हैं लेकिन किस भावना से बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या इफेक्ट है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि जो हरि नाम है वो प्रकट होता है गोलोक से। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान का नाम जो है गोलोक वृंदावन से प्रकट होता है। जैसे रावण था, महाभारत रामायण में कहानी आती है कि रावण सीता का हरण करने आया, कहां पर हुई थी लीला? नासिक पंचवटी। लेकिन आपको मालूम है रावण ने सीता का हरण नहीं किया, रावण ने जो हरण किया वो क्या था? माया सीता थी। ऐसे ही जो लोग सच्ची भावना से जप नहीं कर रहे उनको लगता है हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं लेकिन उन कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे उनके। जैसे मायावादी होते हैं वो भी हरे कृष्ण गाते हैं लेकिन उनका उद्देश्य अलग होते हैं। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है कि किस भावना से हम नाम ले रहे हैं। हमें सेवा भावना से नाम लेना, जैसे वृंदावन प्रभु ने बताया कि सेवा भावना से, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। और लास्ट पॉइंट है यू कैनॉट वाइब्रेट सिंपली बाय मूविंग द लिप। खाली होठ हिलाने से भगवान प्रकट नहीं होते। रियल चैंटिंग इज नॉट लिप डीप बट हार्ट डीप। खाली होठों से नहीं, हृदय से आनी चाहिए आवाज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सेवा भावना होती है तो भगवान कृष्ण गोलोक से उस व्यक्ति के हृदय में आते हैं और हृदय से नर्वस सिस्टम को मूव करते हैं, जीभ को हिलाते हैं, होठ हिलते हैं, वो रियल नाम है, वशिष्ठ नाम है। हमारी इच्छा हम लोग बाकी का कल डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं थोड़ी देर कीर्तन भी करना चाहता हूँ। 5-10 मिनट खड़े होके या बैठ के कल हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी मतलब 6:30 बजे जो टाइम है। आप थोड़ा कोशिश करिए सब लोग टाइम पे आए, और जो लोग के लिए संभव हो तो कल सुबह भी आए।